पांचवें अध्याय में बहुत सुंदर संन्यास योग की बात की गई है और यहां पर अर्जुन का पुनः एक सवाल है। पहले सवाल पूछा ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है, अभी सवाल है संन्यास योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है। तब भगवान कहते संन्यास योग एवं कर्म योग दोनों ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जो मनुष्य कर्म करता हुआ किसी के साथ न द्वेष करता है न किसी कर्म फल की चाहता है वह सन्यासी ही सदा जानने योग्य है, वह सन्यासी है। व्यक्ति को बांधने वाला या मुक्त करने वाला उसका कर्म नहीं है, परंतु उस कर्म करने की वृत्ति है। किस वृत्ति से वो कर्म किया गया है वो बंधन को क्रिएट करता है या वो हमें बंधन से मुक्त कर देता है। जहां द्वेष है, वैर है, लोभ है, कामना आदि विकारों का त्याग ही संन्यास है। भगवान ने गीता में अर्जुन को कहीं पर भी ये सलाह नहीं दी है कि तुम अपना गृहस्थ छोड़ दो, अपना कर्तव्य छोड़ दो, अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ दो, कभी नहीं कहा। यानी गीता का ज्ञान भगवान ने जो दिया गृहस्थियों के लिए दिया है, अर्जुन के लिए है। अर्जुन एक गृहस्थ आश्रम में था, उसी को ही ये ज्ञान दिया गया है कि जीवन जीना है तो कैसे जीना है, उसने बुरी वृत्तियों को कैसे छोड़ना है, क्योंकि वही बंधन में बांधने वाला है। भगवान ने कभी गृहस्थ छोड़ने की बात नहीं की है, न कर्तव्य को छोड़ना नहीं है, न जिम्मेवारियों को छोड़ना है, लेकिन उसमें रही हुई बुराइयां जो उसको छोड़ो, तो कर्म करो, जिम्मेवारी निभाओ, अपना कर्तव्य भी निभाओ, पूरा करो, लेकिन उसमें वृत्ति को साफ रखो, ये संन्यास है। और आगे इसीलिए भगवान कहते कर्म योग के बिना संन्यास की प्राप्ति ही नहीं है। जो योगयुक्त पवित्र आत्मा है और सर्व प्राणियों में आत्मा को देखते हुए उसका मन वश में होता है, ऐसे जितेंद्रिय सर्व कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करते हुए भी स्वयं को उससे भिन्न समझता है, मालिक समझता है, इंद्रियों का कंट्रोलर समझता है। जो व्यक्ति अनासक्त भाव से अपना कर्तव्य करता है और उसके सभी फल परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता है, वह कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से निर्लिप्त रहता है। जिस प्रकार कमल जल से निर्लिप्त रहता है, वैसे कर्म योगी का हर कर्म आत्म शुद्धि के लिए ही होता है। वह पुरुष नौ द्वार वाले देह में रहते मन बुद्धि संस्कार पर भी अधिकार प्राप्त कर परम शांति एवं सुख का अनुभव करता है। बहुत सुंदर एक बात याद आती है राजा जनक की, कि राजा जनक ने एक बार कहा कि मुझे जीवन मुक्ति का ज्ञान चाहिए, कि जीवन में रहते हुए कमल की तरह मैं मुक्त कैसे रह सकूं, ये ज्ञान मुझे कोई एक सेकंड में दे। बड़े बड़े विद्वान आए राजा के दरबार में, राजा जनक के दरबार में उसको ज्ञान देने के लिए, लेकिन जैसे ही वो ज्ञान देना प्रारंभ करते थे राजा जनक कहते थे मुझे लेक्चर नहीं चाहिए, मुझे एक सेकंड में प्रैक्टिकल कोई बताए कि जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है, जीवन में रहते मुक्ति की अवस्था क्या है। तब कहा जाता है कि विद्वानों की सभा थी, जब कोई राजा को एक सेकंड में नहीं बता सका उस समय कहा जाता अष्टावक्र ने प्रवेश किया। अष्टावक्र जी वहां आते हैं, उसके बॉडी के शेप को देखते हुए सारे विद्वान हंसते हैं। तब अष्टावक्र ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं तो समझता था कि तुम्हारी सभा में विद्वान बैठे हैं, लेकिन ये आज मैं क्या देख रहा हूं, ये तो चमार बैठे हैं। सभी विद्वान को चमार कह दिया, सभी विद्वान बड़े क्रोधित हो गए, हमें चमार कैसे कहता है। तब अष्टावक्र कहते हैं ये मेरी चमड़ी को देख रहे हैं, आत्मा को नहीं देखते हैं। कि आत्मा भी कितनी विद्वान हो सकती है, इसलिए हंस रहे हैं मेरे ऊपर। सब शांत हो गए। अष्टावक्र ने राजा से कहा, मैं ज्ञान दूंगा लेकिन अभी नहीं, समय पर दे दूंगा। प्रैक्टिकल चाहिए ना आपको, समय पर दे दूंगा। सभा विसर्जित हुई, सभी जाने लगे। राजा ने भी अपना घोड़ा मंगाया कि थोड़ा सैर करके आते हैं। और जैसे ही राजा घोड़े पर चढ़ने लगा, एक पैर घोड़े के उस पर रखा हुआ था, एक पैर जमीन पर था, कि दूर से अष्टावक्र ने आवाज लगाई, ठहरो राजन, इस वक्त कहां हो। राजा सोच में पड़ गया, एक पैर जमीन पर, एक पैर घोड़े पर, न मैं जमीन पर हूं न मैं घोड़े पर हूं। अष्टावक्र कहते, यही जीवन मुक्ति का ज्ञान है। कहिए कैसे हैं? तो कैसे, जैसे जमीन पर होते हुए जमीन पर नहीं हो, घोड़े पर होते हुए घोड़े पर नहीं हो, इस तरह संसार में रहते हुए संसार की बुराई आप में न हो, यह है जीवन मुक्ति का ज्ञान। राजा जनक को तब यह जीवन मुक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी आधार से अपने जीवन को चलाने लगे, राज्य को चलाने लगे। इसलिए एक महान राजा बन गए। भावार्थ ये कि भगवान ने जो कहा, सन्यास कोई चीज वस्तु कर्म का नहीं करना है, लेकिन सन्यास करना है तो बुरी वृत्तियों का सन्यास करना है, बुराइयों का सन्यास करना है। और गीता का उपदेश यही बात को लेकर के बार बार हमारे सामने आता है कि गीता एक ऐसी माँ है, गीता माता उसको कहा, ऐसी माता है जो जैसे माँ बच्चों के संस्कारों में बुराइयां जो होती है उसको निकालने में सक्षम होती है, इसी तरह गीता का ज्ञान भी हमारे अंदर की बुराइयों को खत्म करने के लिए सक्षम है। यहां आगे इस अध्याय में भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है, पांचवें अध्याय में, परमात्मा मनुष्य में कर्तापन नहीं रचता है, न कर्मों को रचता है और न कर्म फल के संयोग को रचता है, परंतु स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार सब बरतते। प्रकृति माना सात्विक, राजसिक, तामसिक, जिसमें जो प्रकृति है उसी के दबाव में आकर के हरेक कर्म करता है, बरतता है। भावार्थ ये कि आज दिन तक हम यही मानते रहे कि हमारे कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो कहते भगवान रिस्पॉन्सिबल है, भगवान ही सब कुछ करता है। कई लोग तो वहां तक कह देते भाई ये हाथ उठता है तो भी भगवान की मर्जी से उठता है, पत्ता झाड़ का हिलता है तो भी भगवान की मर्जी से हिलता है, भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सके, है ना, यही कहते हैं ना। भावार्थ ये कि भगवान सचमुच क्या करता है और क्या नहीं करता है, सोचने की बात है। दुनिया में करोड़ों पत्ते हैं, करोड़ों वृक्ष है, क्या भगवान बैठ के एक एक पत्तों को हिलाता रहेगा? यही काम है उसका, ऊंचे से ऊंची हस्ती का काम खाली पत्ते हिलाने का है। अच्छा, ये हाथ उठा भगवान की मर्जी से उठा, और ये हाथ ने जाकर किसी को थप्पड़ मारा तो क्या कहेंगे, भगवान की मर्जी हुई? तो भगवान क्या करता है और क्या नहीं करता है, भगवान ने स्पष्ट गीता में कहा, परमात्मा मनुष्य में कर्तापन नहीं रचता है, मनुष्य खुद करता है, न ही कर्मों को रचता है और न ही कर्म फल के संयोग को रचता है, कहीं पर भी उसका इंटरफियरेंस नहीं है। हर इंसान का जन्म जब होता है तो ईश्वर द्वारा उसको दो गिफ्ट मिलती है, कौन सी? पहली गिफ्ट उसको मिलती है बुद्धि। बुद्धि की एक बहुत पावरफुल गिफ्ट है जो सही गलत को अच्छी तरह पहचान सकती है, और दूसरी गिफ्ट मिलती है फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ चॉइस। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें समझ है, बुद्धि है, अब तुम करो। तो भगवान ने बुद्धि दी, फ्रीडम दी, अब हमें खुद करना है। इसीलिए हमारे कर्मों के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल है, हमारे कर्मों के लिए भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, कहते हैं ना ये। माना हमारे कर्मों के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल है और ये जिम्मेवारी हमें उठानी ही चाहिए। भगवान एक एक चीज बैठ के करता रहे फिर तो मनुष्य का अस्तित्व का महत्व क्या रहा फिर? आज घर में एक बच्चा हो, जब तक बच्चा है ना समझ है, आप उसको डायरेक्ट करते, बेटा ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन 16 साल का हो जाए, समझदार बन जाए, उसके बाद भी आप उसको टोकते रहो, ये करो वो नहीं करो, ऐसा करो वैसा करो, तो बच्चा क्या कहेगा, क्या कहेगा? इतनी बुद्धि हमारे पास है, आप बार बार हमें टोकते नहीं रहो, कहेंगे कि नहीं कहेगा? कहेगा। ठीक इसी तरह अगर भगवान ही सब कुछ करना है कि ये हाथ उठाना है तो भी भगवान की मर्जी से ही उठाना है, तो फिर हमारे एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? फिर उसको ऊपर बैठने की जरूरत क्या है? फिर तो वो नीचे आकर के ही कर्म के खेल के मैदान में आकर खेल करे ना। तो इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, मैंने बुद्धि दे दी, फ्रीडम दे दी, अब आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो भगवान यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, देहधारी आत्मा अपने स्वाभाविक स्वतंत्र इच्छा से कर्म करती है, इसलिए उसका उत्तरदायित्व भी उसी पर है और वही अपने किए का फल भोगती है। परमात्मा किसी के भी पुण्य कर्म या पाप कर्म के लिए जिम्मेवार नहीं है। जब मनुष्य आत्मा में ज्ञान पर अज्ञानता का पर्दा पड़ जाता है तो वह मोह माया के माया में उलझकर अपने निज स्वरूप को भूल जाता है और परमात्मा को ही अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी समझने लगता है। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। भगवान को हर बात के लिए उत्तरदायी समझ लेना, उसके लिए ये कहना कि हाँ भगवान ही सब कुछ करे, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। परंतु जब आत्मज्ञान द्वारा वह अज्ञान नष्ट होता है तो सभी बातें इस तरह स्पष्ट समझ में आने लगती है जैसे सूर्य की रोशनी में सब स्पष्ट हो गया है। इसलिए आज के बाद हम कभी ये नहीं कहे कि भाई भगवान ही सब कुछ करता है, नहीं, हम इंसानों को भगवान ने बुद्धि दी है, स्वतंत्रता दी है और हम खुद करते। एक छोटे बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, वो छोटे बच्चे के आगे भी आप झूठ बोल करके देखो, जैसे ही आप झूठ बोलेंगे ना वो बच्चा तुरंत आपसे कहेगा आपने झूठ बोला ना, यानी उसके पास भी विवेक है ये सही है ये गलत है, तभी उसने आपको कहा कि आपने झूठ बोला ना। लेकिन उस वक्त हम क्या कहते हैं, समझता नहीं, चुप बैठ, तो बीच में बोलने का नहीं है ना, बड़े जब बात करते हैं बीच में बोलने का नहीं, वो कंफ्यूज्ड होता है कि भाई उन्होंने जो कहा वो सही है या मैं जो समझ रहा हूं वो सही है। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है लाइफ में, तब दूसरी बार वो सोचता है भाई झूठ बोलना यही सही होगा, भाई हमारे पापा तो समझदार है वो तो गलत है ही नहीं, इसलिए वो दूसरी बार वो भी झूठ बोलता है। अब झूठ बोलता है तो भी थप्पड़ पड़ती है झूठ बोलता है, अब वो और कंफ्यूज हो जाता है, सच बोला तो भी कहा तू समझता नहीं चुप बैठ, अब झूठ बोलता हूं तो भी कहते हैं तुम झूठ बोलता है, अब सही क्या है? अब यहां से कंफ्यूजन लाइफ में शुरू होती है। और इसीलिए कभी कभी जो कहा भगवान ने कि जिस प्रकृति के दबाव में आ जाता है व्यक्ति उसी अनुसार फिर बरतने लगता है। अगर तामसिक प्रकृति अधिक होगी उसके स्वभाव में तो झूठ को ही अपना लेता है, अगर सात्विक प्रकृति अधिक होगी तो सच को अपना लेगा। तो भगवान ने हर इंसान में बुद्धि दी है, विवेक दिया है और स्वतंत्रता दी है, इसलिए कर्म के उत्तरदायी भी हम ही हैं, हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए हर कर्म करे तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, फिर भगवान आगे कहते हैं, इंद्रियों के विषय से उत्पन्न सुख यह आदि मध्य अंत दुख का कारण है। हाँ, अभी बंद हो गया। तो इंद्रियों के विषय से उत्पन्न सुख यह आदि मध्य अंत दुख का कारण है। जो मनुष्य काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन कर उससे मुक्त हो जाता है वह समर्थ आत्मा है, वही सच्चा योगी है। वह अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में स्थित कर सकता है और श्रद्धा से उसकी शरण में चला जाता है। उसकी सर्व के प्रति सम दृष्टि होती है, इसलिए संसार में रहते मोह रहित संशय रहित जीवन मुक्त है। वह मन की एकाग्रता द्वारा असीम सुख का अनुभव करता है। बहुत सुंदर बात यहां याद आती है एक उदाहरण के रूप में कि एक बार एक सन्यासी राजा जनक के पास आता है और वो सन्यासी ने राजा जनक से कहा कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद भी मैं अपने मन को वश नहीं कर पाता, जीवन में रहते हुए आसक्तियों से मुक्त नहीं हूं, फिर मैं कैसे मान लूं कि आप इन वैभवों के बीच में रहते हैं और ये वैभवों के बीच में रहते हुए आप जीवन मुक्त स्थिति में हैं। कई बार कई लोग हमें भी ये सवाल करते हैं कि आप सब इस वैभवों के बीच में रहते हुए कैसे जीवन मुक्त रह सकते हैं, सब कुछ है यहां पर। राजा जनक मुस्कुराए और कहा, बहुत सुंदर सवाल पूछा आपने, लेकिन ऐसा है कि मैं थोड़ा कारोबार में बिजी हूं तो मैं वो काम निपटा करके आता हूं, फिर आपके साथ बैठ के इसके ऊपर चर्चा करता हूं, थोड़ा वक्त मुझे दीजिए, मैं अपना काम निपटा करके फिर आ जाता हूं, लेकिन तब तक आप बैठ के क्या करेंगे, इसलिए आप ऐसा करो कि मेरे महल के अंदर जो बहुत सुंदर कारीगरी की है वो कारीगरी देख के आओ। सन्यासी ने कहा ठीक है। राजा जनक ने कहा लेकिन एक बात है कि वो कारीगरी जहां कर रहे हैं महल के दूसरे भाग में जो कारीगरी चल रही है वहां पर अभी लाइट्स लगी नहीं है, रोशनी नहीं है, आप ऐसा करो ये दिया लेकर के जाओ और दिए के प्रकाश में आप वो कारीगरी को देख के आइए। कहा ठीक है, दिया लिया उसने देखने के लिए। और फिर राजा जनक ने कहा एक और बात कि अभी खिड़की दरवाजे लगे नहीं है इसलिए हवा की वही दिशा है, कहीं ये दिया बुझ ना जाए तो ध्यान रखना। कहा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। सन्यासी वो कारीगरी देखने चले गए, सारा महल की सुंदर कारीगरी देख करके जब वापस आए तब तक राजा जनक भी फ्री होकर के आ गए। राजा जनक ने पूछा महल देख कर आए? कहा हां देख के आया। कैसा लगा? पूछा। राजा जनक ने कहा बहुत सुंदर कारीगरी है। राजा जनक ने उस वक्त पूछा ध्यान कहां था, कारीगरी देखते समय ध्यान कहां था? तो कहा ध्यान तो दीपक पर था कि दीपक बुझ नहीं जाना चाहिए, है ना। राजा जनक ने कहा यही तो रहस्य है जीवन मुक्त स्थिति का कि मैं भी इन वैभवों के बीच में रहता हूं लेकिन मेरा ध्यान आत्मरूपी दीपक पर है जो बुझ नहीं जाना चाहिए। और यही प्रश्न का उत्तर हम आपको भी दे रहे हैं कि रहते हैं यहां भले सब सुविधाएं हैं सब साधन है लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, ध्यान उस आत्मा पर रहता है कि यह आत्मा का दीपक बुझ नहीं जाना चाहिए, यह निरंतर जलता रहे, यही जीवन मुक्त स्थिति का रहस्य है। और फिर वही ध्यान योग की बात को भगवान स्पष्ट करते कि हे अर्जुन, बाहर के विषयों दृश्यों का चिंतन नहीं करो, रहना है उसके बीच में लेकिन बाहर के विषयों का विकारों का दृश्यों का चिंतन नहीं करो। कहा ना योग में जब बैठते तो बाहर के दृश्य याद आने लगते, क्या क्या किया था दिन भर में वो दृश्य याद आते हैं, तो उन दृश्यों का चिंतन नहीं करो और अपने अंतर चक्षु को ब्रुकुटी के बीच में स्थिर करो, क्योंकि यही तो स्थान है आत्मा का। मेडिकल साइंस के हिसाब से भी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में आत्मा का निवास है, यानी सरफेस मार्किंग यही है। यहां से ढाई इंच, ठीक ढाई इंच पीछे और ऊपर से दो इंच नीचे, है ना, वही स्थान है आत्मा का निवास का। तो कहा यह सरफेस मार्किंग है, इसलिए भगवान कहते हैं अपने अंतर चक्षु को ब्रुकुटी के बीच में स्थिर करो, मन को शांत कर, परमात्मा के ध्यान में बुद्धि को एकाग्र करो तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति कल्याण की कामना प्रवाहित कर सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाकर परम शांति को प्राप्त करो। सारे विश्व के प्रति उस वक्त इतनी शुद्ध फीलिंग्स हो और वो शुद्ध फीलिंग्स को प्रवाहित करो, तर चक्षु को ब्रुकुटी के बीच में स्थिर करो, मन को शांत कर, परमात्मा के ध्यान में बुद्धि को एकाग्र करो तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति कल्याण की कामना प्रवाहित कर सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाकर परम शांति को प्राप्त करो। सारे विश्व के प्रति उस वक्त इतनी शुद्ध फीलिंग्स हो और वो शुद्ध फीलिंग्स को प्रवाहित करो, उनका चिंतन नहीं करो, लेकिन सारे संसार के कामना मना कल्याण की कामना को प्रवाहित करो, तभी योग ईश्वर के साथ हमारा लग जाएगा। अंतर चक्षु को यहां एकाग्र करो ब्रुकुटी के मध्य में, जो आत्मा का निवास स्थान है, जहां तीसरा नेत्र दिखाते हैं, वहां एकाग्र करो और उस परमात्मा के साथ जोड़ो। यही एकाग्रता की विधि है। और फिर छठे अध्याय में भव